शब्दघनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिगुरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिम्रान् धानान् ज्ञानान् जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुभ्यो नमः परंपराचारि गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोनुसारमासाध्य श्रीमत् समर्थभद्राचार्य देवैर्विरचितम् मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंभकुंडाब्जो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानां जैनं जयतु शाश्वतम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणानि सीतिस्रतिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहर देवीः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमघोवयीं शिरसा इच्छामि भन्ते सुदभक्तिकौ सगोकौतसालोचिम् अंगुलंग पहिने पाहुने पतियम्मी सुत पनिमानी भोग भोगे चूलिया चे सुत थय तुविधम कायम सानी चुकालमंची मी पूजे मी वंदा मी नमनसानी दुखो को कमखो इलाओ सुगे उन्नम समाई उन्नम जिन्मुन संपत्ति को उन्चम नमोस्तु पूर्वानी श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति कायो सगमखो श्रुतिजल दीपारकेभ्या सपरमद विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रे कुशले धम्मायरिय सदा वन्दे गुरुभक्तिसङ्गमे मया तरन्ति संसारसागरं घोरम् शृण्वन्ति यक्षुकर्णम् जन्म मरणम् न पावन्ति येनुत्पन्दतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधु वा शीलप्राहरणागुणप्रहरणास्तन्द्रार्कतेजोऽधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनघटा पीयन्तु मां साधु वा गुरुवापान्तमो नित्यम् ज्ञानदर्शन नायकाः चारुतारणो गम्भीरा मोक्षमार्गे उपदेशका इच्छान्ते ऐरिवत्तिकाः सुगोकोदृशालोचन अङ्गुवङ्ग समनाम समलेशं सञ्चरयुतानं पञ्चविहाचारणम् आर्यानम् आराध्यसुगणानुपदेशानम् मुख्यायानम् तिरङ्गम् पालन्द्राणम् सहसाहनम् सानिचिकालनम् चिनि पूजे निवन्दामि नमसामि दुखो को कम को वैलाव सुबेगम सनायम जिन्मुन संपत्ति को उमच्छम नमः शिवर्धनाय निर्भूत कलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदविद्यावर्तनाय ते बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंड कुंड स्वामी की आचार्य सनंत भद्र स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की ये रत्न करंडक श्राव का चार आचार्य सनंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। धर्म की शुरुआत कुछ धार्मिक क्रियाओं को लेकर हम करते हैं, पर हम लोगों के साथ कई बार ये मुश्किल होती है कि हम धार्मिक क्रियाओं में इतने अधिक तल्लीन हो जाते हैं कि क्यों हम कर रहे थे ये बात भूल जाती है, और तब फिर वे धार्मिक क्रियाएं भी हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं दे पाते हैं। जब तक हमारा दृष्टिकोण पवित्र नहीं होता तब तक हम कोई भी क्रिया करें वो क्रिया हमें सुख और शांति नहीं दे सकती। सुख दृष्टिकोण का ही है। अगर किसी व्यक्ति का ये कॉन्सेप्ट है कि उसे हिंसा में सुख मानना है तो फिर वो हिंसा करके भी सुख मान लेता है, और किसी व्यक्ति के अंदर अगर ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं हिंसा में सुख नहीं है तो फिर वो अहिंसा में ही सुख निकाल लेगा। वरना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका सोच ठीक नहीं है, तो आप हर अच्छी चीज में से ही बुरा निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि कितना भी हम बाह्य आचरण पवित्र कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन में जो धर्म घटित होना चाहिए वो घटित नहीं होता। फिर हम साधनों का सदुपयोग नहीं करते हैं, फिर हम साधनों का अपने अनुसार उपयोग करना शुरू करते हैं। सच्चे देव गुरु शास्त्र उस धर्म के साधन, उस धर्म के लिए साधन है जो हमारा साध्य है। धर्म हमारा साध्य है, धार्मिक क्रियाएं हमारा साध्य नहीं है। धार्मिक क्रियाएं हमें उस साध्य तक ले जाने के लिए साधन है। क्या कभी हम इस तरह से विचार करते हैं कि कोई भी हम धार्मिक क्रिया करेंगे तो उसके पीछे हमने जो लक्ष्य अपना तय किया था वो प्राप्त किया या नहीं किया? अगर हम ऐसा ध्यान रखें तब हमारे जीवन में जरूर वे धार्मिक क्रियाएं कुछ ना कुछ परिवर्तन लाए बिना नहीं रहेंगे। अभी सारी धार्मिक क्रियाओं के बावजूद भी, या कि हमें कहना पड़ रहा है कि आप धार्मिक क्रियाएं करिएगा, आप धर्म करिएगा, अभी हमें कहना पड़ रहा है कि आप मांस भक्षण मत करिएगा, या कि आप सप्त व्यसन मत करिएगा, अभी हमें क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम सबके भीतर जो एक एटीट्यूड है, जब तक वो नहीं बदलेगा, जब तक हमारे भीतर एक स्पिरिट पैदा नहीं होगी उस चीज की, तब तक ये सारी चीजें कहीं जाने के बाद भी असरकारी नहीं होगी। आप लोग बेटों को आप कितना समझाते हैं कि बेटे बुरा मत करना, इसके बाद भी, जबकि वो आपका बेटा है और आप अच्छा करते हैं, इसके बावजूद भी आपका बेटा बुरा क्यों करने लगता है? कभी आपने उसकी सोच को परखा? कभी उसे आपने कोई अच्छा सोच दिया? बचपन से उसके सोच को पकड़ा कि वो क्या सोचता है, वो हर चीज को किस तरह देखता है? आपने उसे देखना सिखाया चीजों को? चीजों को ठीक ठीक देखना सिखा देने के बाद फिर कोई मुश्किल नहीं होती है, आचरण अपने आप भीतर प्रकट होना शुरू हो जाता। मेरा तो अनुभव, मैं सोचता हूं कि ऐसा ही है। अगर आपका दृष्टिकोण बदल गया, चीजें सब वहीं के वहीं हैं, आप ही पूरे के पूरे बदल गए, और आप अपने को पूरा बाहर से बदलते रहिएगा, भीतर आपका सोच उतना ही गंदा है, तो बाहर से अगर बहुत अच्छा भी होगा दिखेगा, तब भी गंदगी तो भीतर की, वो बाहर कहीं ना कहीं आपको दुर्गंध देगी ही देगी, आप दूसरों को भी देगी और अपने जीवन को भी शांति नहीं दे पाएगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अच्छे से अच्छा आचरण करने वाले व्यक्ति का भी सोच उतना अच्छा नहीं होता, अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी, पता नहीं वो कैसा सोचता है। अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ने वाला भी जब दूसरे की बुराई करता हुआ देखा जाता है तो तकलीफ होती है, क्या रे इसने कहे का अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ा, इसका सोच ही नहीं बदल पाया। अच्छी से अच्छी क्रियाओं करने के बाद भी हमारा सोच नहीं बदलता है, प्राणी मात्र के प्रति अगर हमारे मन में मैत्री भाव नहीं आता है, या हमारे मन में जहां गुणवान है उनके प्रति हर्ष का भाव नहीं आता है, जहां कोई दीन दुखी है उसके प्रति हमारे मन में अपने आप अगर करुणा नहीं आती है, और जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की विपरीत चलता है उसके प्रति अगर हम तटस्थ होना नहीं सीखते हैं, तो मानिएगा आप चाहे जितना आचरण कर लीजिएगा, वो आचरण आपको शांति न दे पाएगा और लोगों को संदेश भी उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे आने वाले दिनों में हम बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं करने वाले हैं, कल से हम शुरू करेंगे और हम पूरे 10 दिनों तक अपने लाइफ को एक रूटीन देने की कोशिश करेंगे, एक रूटीन में हम बन जाएंगे, और फिर 11वें दिन हम उस रूटीन को इतने मजे से तोड़ेंगे और इतना आनंद लेंगे उस रूटीन को तोड़ करके कि शायद उन 10 दिनों में उतना आनंद नहीं मिला होगा जिसने हमें 11वें दिन उस सारे रूटीन को तोड़ फोड़ के फिर अपने एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने में मिलेगा। इससे मालूम पड़ता है कि हमने शायद कई बार ये प्रक्रियाएं दोहराई हैं, जिसकी जितनी जिंदगी है उसमें उतनी बार तो हर साल ये प्रक्रिया दोहराई होगी, पर आज तक क्यों वो साधन हमें अपने साध्य की प्राप्ति नहीं करा पाया। साधन तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन साधन का उपयोग और दुरुपयोग हमारे ऊपर निर्भर करता है, और उपयोग दुरुपयोग हमारे ऊपर इसलिए निर्भर करता क्योंकि जैसा हमारा सोच होगा वैसा हम कर लेंगे। हमारी खाने पीने की तो है आसक्ति, पर चूंकि एक नियम है कि सब्जियां नहीं खानी चाहिए पर्यूषण में, तो हम सब्जी छोड़ देंगे, पर हमारी वो आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, हम वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगी और हम बाकी चीजों को इतने बढ़िया से आसक्त होकर के खाएंगे कि शायद उतनी आसक्ति से सब्जी ना खाते होंगे, तो फिर हमारी सब्जी छोड़ने का औचित्य क्या हुआ? इस पर हम विचार करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खाइएगा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे उसके पीछे जो ध्येय था वो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। हमने रात्रि भोजन छोड़ा, क्यों छोड़ा जाता है रात्रि भोजन? अहिंसा व्रत के पालन के लिए छोड़ा जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे भीतर अहिंसा आई या नहीं, ये हमने देखा कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात्रि भोजन छोड़ करके और बहुत सारे हिंसा के काम हमने उसी टाइम में विस्तार लिए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ध्यान के लिए ध्यान के लिए छोड़ा था और हम वो ध्यान ना कर पाए हों? रात्रि भोजन के त्याग के पीछे सबसे बड़ी चीज छुपी है कि आपको एक समय मिल जाए अपने आत्मचिंतन के लिए। पर हम रात्रि भोजन छोड़ करके भी आत्मचिंतन नहीं कर पाए, उस टाइम को हम सेफ नहीं कर पाए, तो कितना आश्चर्य लगता है। एक समय हुआ करता था जब मां को सिगड़ी सिलवाते देखा करता था और चूल्हा जलाते देखा करता था, घंटों परेशान हो जाती थी जब वो बड़ी मुश्किल से, और बरसात के दिन में तो फूंक फूंक के परेशान है, आंख भी है और सब पानी पानी हो रहा है, नाक में से निकल रहा है, तो परेशान होती थी। उनके पास फिर भी समय बचा करता था, इतना घंटे भर उनका उसमें बर्बाद हुआ। आज की भाषा में घंटे भर बर्बाद हुआ। आज तो बस लाइटर जलाए नहीं और आग है आपके पास, वो टाइम कहां चला गया? पहले भी वो सारा टाइम इस तरह से व्यतीत करते थे, पूरे दिन उनके पास समय हुआ करता था, घंटे भर में पीसा करते थे, और अगर मसाले वसाले बनाना है तो नमक बनाना है तो उसके लिए तो और बहुत सारा इंतजाम करना पड़ता था। वो टाइम जो हमारा बच गया है वो कहां कंज्यूम हो गया, हमारा चला कहां गया? वो हमने ये सारी चीजें इसलिए सीमित की थी कि हमारा समय बचे, हमारे अपने आत्म कल्याण के लिए बचे। और हम अगर अपने आत्म कल्याण के लिए समय नहीं बचाते हैं और किसी चीज में एक छोड़ के दूसरी चीज में अगर हम इंडल्स हो जाते हैं, आशक्त हो जाते हैं, मानिए हमने साधन का सदुपयोग नहीं किया। मैं आपसे चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हमें जो साधन मिले हैं अपने आत्म कल्याण के, उन साधनों का सदुपयोग करें, अपनी दृष्टि को निर्मल करें कि आगे आने वाले 10 दिनों में हम अपनी लाइफ को एक ऐसा रूटीन नहीं दे सकते जो कि हमारे 355 दिन को सुधार के रख दे। क्या ये 10 दिन हमारे 355 दिन पे भारी नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं अगर हम अपने जीवन को एक लय दें, हम अपने जीवन को एक अच्छा सोच दें, अच्छा विचार दें, जिसके विचार पवित्र होते हैं आचरण पवित्र हो सकता है। और आचरण पवित्र हो कोई जरूरी नहीं है कि उसके विचार पवित्र होंगे, दोनों के बीच हमें समायोजन करना पड़ेगा, विचार और आचरण। आज दोनों अलग थलग पड़े हैं, किसी किसी के विचार किसी के पास बहुत अच्छे हैं पर आचरण उतना अच्छा नहीं है, पर किसी के पास आचरण अच्छा है पर विचार उतने अच्छे नहीं है। इसी को कहते हैं कि ज्ञान के साथ आचरण हो और आचरण के साथ ज्ञान हो, अनुभूति और विचार दोनों एक साथ हो, जैसा विचार वैसी अनुभूति, जैसी अनुभूति वैसा ही सोच। हम आगे आने वाले दिनों में ये शिक्षा लें। हम लोग कल बैठे बात कर रहे थे, हम रोज बात करते हैं और बहुत बारीक बारीक चीजों पर भी बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मजा आता है। मेरे पास दो ही काम होते हैं, या तो मैं अपनी सेल्फ स्टडी करता हूं या डिस्कशन करता हूं, और फोकट की चर्चा करने का मेरे पास समय नहीं रहता, क्या करूं। दो ही चीजें हैं और दोनों मजा आता है। डिस्कशन में कई बार इतनी बढ़िया चीजें निकलती हैं। किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अहिंसा सत्य चोरी सब हम सुनते चले आ रहे हैं और हमने ग्रहण भी कर लिए हैं, पर जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? बहुत सीधा सीधा उन्होंने कहा, मैंने अहिंसा धर्म के बारे में बहुत सारा सुना है, मैंने सत्य धर्म के बारे में सुना है, मैं जानता हूं और उसको करता भी हूं, पर यह मान के करता हूं कि ये सब मेरे लिए किसी ने करने के लिए कहा है इसलिए करता हूं, मेरी चेतना इसको करने के लिए कहती है ऐसा नहीं कहता। सांस लेने के लिए दूसरा नहीं कहता, हम अपने आप सांस लेते हैं, किसी के कहने से लेते हैं। जैसा हम किसी के कहने से सांस नहीं लेते, हमारी अपनी अनिवार्यता है सांस लेना। जिस दिन अहिंसा और सत्य और अचौरी हमारी अनिवार्यता हो जाएगी सांस की तरह, कि एक क्षण जीना मुश्किल है अहिंसा के बिना, उस क्षण समझिएगा कि जो घटित होगा वो देखने लायक होगा, वो आपके अपने जीवन से घटित हुआ है। जिस दिन ये तकलीफ होने लगे कि ये हिंसा तो जो है मुझे ही पतित करती है, अभी हमें ऐसा एहसास नहीं होता, क्योंकि धर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि इतना इतना कर लेने से धार्मिक हुआ जाता है, इसलिए हम दोहरा लेते हैं उन चीजों को। और एक बहुत छोटी सी बात, कल हम पढ़ चुके हैं अहिंसा के बारे में और सत्य के बारे में। एक व्यक्ति ने कहा था कलकत्ते से आए थे बहुत पहले कि कोई नया व्रत दीजिएगा, ये पुराने पुराने व्रत मत दीजिएगा। मैं आपसे लेने पुराने व्रत नहीं आया हूं, वो तो सब लोग ले लेते हैं कि आलू का मेरा त्याग है, या कि जमीकंद का मेरा त्याग है, या कि साहब व्यसन का त्याग है। अच्छी बात है, वो सब तो मेरा है, कोई नया व्रत दीजिएगा। व्रत नया कहां से लाएं, व्रत तो वही है 5, उनको करने का सोच आपका अलग हो सकता है। मैं सोचता रहा, मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताइएगा कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बोले बोलता हूं, इसमें क्या बात है। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ, बोले कभी कभी लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, बाकी नहीं लगता कि नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए सेफ करने के लिए, अपने को सेफ करने के लिए झूठ बोलनी पड़ेगी। तो मैं अधिकांश झूठ अपने को सेफ करने के लिए बोलता हूं। हमने कहा ऐसा करिएगा, कभी कभी दूसरे को मुश्किल में डालने वाली झूठ भी बोलते होंगे। हाँ बोले, कभी कभी बोलता हूं। तो ऐसा कर लीजिएगा कि दूसरे को मुश्किल में डालने वाली झूठ मत बोलिएगा। बोले ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत मुश्किल में पड़ा मैं। मैंने कहा अच्छा, दिन भर में कितनी झूठ बोलते होगे? बोले 100 से ज्यादा हो जाती है। मैंने कहा एक आध छोड़ दो, हो नहीं सकता, यह भी नहीं हो सकता। झूठ बोलने का मन हुआ, मानसिकता बनी और बोल दिया, फिर थोड़ी हम सोचते हैं अभी भी कोई उपाय हो सकता है क्या। मैं सोचता रहा, मैंने एक दिन का समय उनसे लिया कि आप कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। और अचानक मुझे दिमाग में आया कि क्यों ना हम यहां से शुरू करें, हम बोलें सब कुछ करें, पर इसके बावजूद भी मैं झूठ बोल रहा हूं पर मैं झूठा नहीं हूं, मैं झूठा नहीं पढ़ूंगा। और मैं झूठा नहीं पढ़ूंगा इसके मायने मैं झूठ बोलने के बाद स्वीकार तो कर सकता हूं कि मैंने झूठ बोला है। अगर मैं झूठा हूं तो झूठ बोलने के बाद भी उसको सच साबित करूंगा, अगर मैं झूठा हूं तो। अगर मैं झूठा नहीं हूं तो उस झूठ को झूठ मान के रियलाइज करूंगा और कन्फेस करने के लिए दूसरे के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मैंने कहा ऐसा करिए, जितनी झूठ बोलना हो आप दिन भर में आप जानिएगा, लेकिन किसी एक झूठ को कन्फेस करना शुरू कर दीजिए। जाके कह दीजिए किसी से जो सुबह झूठ बोली थी, शाम होते ना होते जाके कह दीजिए वो जो सुबह आपसे कहा था वो झूठ था। इतना साहस अगर आप कर सकें, आपका सोच ही बदल गया। और आपका सोच बदल गया तो मानिए आपके भीतर सत्य धर्म या कि सत्य का व्रत अचानक अपने आप पैदा हो जाएगा। आप झूठ बोलने से पहले 100 दफे सोचेंगे कि कन्फेस करना पड़ेगा, विश्वास टूट जाएगा कि ये आदमी झूठ बोलता है। आप अपने मुंह से स्वीकार करना पड़ेगा आपको उसके पास जाके कि वो जो दोपहर या सुबह कहा था वो झूठ है। सच ये है, क्या हम बेटों को इस तरह से अपनी स्वेच्छा से अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से, लिखे तो हैं शास्त्र में पर इन सब से मेरे आत्मा का कल्याण होगा ऐसा विचार करके नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा सोच के इन व्रतों को करते हैं तो व्रत बहुत आसान है, 5 व्रत आसान है, अहिंसा सत्य अचौरी ब्रह्मचरी और परिग्रह का परिमाण या इच्छाओं का परिमाण, और शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। अगर इच्छाओं का परिमाण कर लिया आपने, आपने अपने मन को जीत लिया, तो मानिएगा अहिंसा आपके पास है, आपके पास सच्चाई है, आपके पास अचौरी है, आपके पास ब्रह्मचर्य, आपके पास सील है। अगर आपकी इच्छाओं का आपने परिमाण कर दिया, लिमिटेशन कर दिया है। अपन ने 2 व्रत पढ़ चुके थे, अहिंसा और सत्य। ये दोनों हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। हमारे जीवन में ग्रहण तो हम कर लेते हैं पर प्रकट नहीं हो पाते। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है, एक बहुत छोटी सी घटना आपने कहीं सुनी होगी। हम लोग तो शायद सच बोल के मुक्त नहीं हो पाते हैं, सच बोल के मुक्त होने का अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन पक्षी सच बोल करके मुक्त हो जाते हैं। ये घटना कई बार आपने सुनी होगी और कितनी बढ़िया घटना है। तो जब जब याद आ जाती है तो संदेश देती है। एक पक्षी था पिंजरे में, वो राजा के यहां पक्षी था और सोने चांदी की कटोरियों में खाना खिलाया जाता था उसको, और खाना भी तो बहुत स्पेशल था जो कि एक आम आदमी को नहीं मिल सकता, वो उस पक्षी को मिला करता था। लेकिन वो पक्षी बोल लेता था, आवाज दे लेता था, बात कर लेता था। एक दिन उसने बाहर जाते एक साधु के मुंह से सुना कि जो सच बोलते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। उसने कहा साधु तो गलत नहीं बोल सकता, वो कह रहे हैं कि जो सच बोलते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, मैं भी एक आध बार प्रयोग करूं सच बोलने का। और कहते हैं कि उस राजा के यहां पर और दूसरे देश के दूत आए, राजा उनसे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए कहलवा दिया गया कि राजा इस समय नहीं है। और जैसे ही ये दरबार में आकर के कहा कि राजा नहीं है, तो वो जो पक्षी उसमें बैठा था उसने कहा नहीं झूठ है ये, राजा भीतर है। अब इतने दूत के सामने दूसरे देश के और राजा की तो फजीहत हो गई, राजा को बहुत तैश आया। राजा ने कहा कि बेईमान ये तोता, बेईमान ये पक्षी मेरा खाता है और मेरी नहीं बजाता, निकालो इसको यहां से, बाहर करो इसको। यही तो चाहता था वो, और पिंजरा खोल दिया गया, पक्षी वहां जाकर के पेड़ पर बैठा है और कहता है कि साधु ठीक कहता था, एक बार सच बोल के तो देखो, मैंने तो एक ही बार सच बोल के देखा, मुझे मुक्त कर दिया गया। वो एक बार सच का प्रयोग उसने किया है और वो मुक्ति का अनुभव कर रहा है, और हम अपने जीवन में कभी भी सच का प्रयोग करके मुक्ति का अनुभव करके ही नहीं देखते हैं, कभी करिए तो। कितना मुश्किल पड़ती है, अभी मैं पढ़ रहा था कि झूठ बोलने के लिए बहुत होशियार होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कब कहा था, किससे कहा था, क्या नहीं कहा था। सच बोलने के लिए बुद्धि भी हो तब भी, अगर सच झूठ बोलना हो आपको तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि रास्ते से चले जा रहे हैं और कोई मित्र मिला और आपसे पूछे कि कब आए थे, और आप कहें कि 8 दिन हो गए तो मैं तो फुर्सत ही नहीं मिलने की, और अगर 10 कदम चलने के बाद दूसरा मित्र मिले और आप उससे ये कहें कि 2 दिन तो हुए हैं अभी, तुम दिखे नहीं, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें देखने की, उससे 8 दिन बोला था, इससे 2 दिन बोल दिया, और तीसरा वाला और निकट का मिला तो उससे कहा जब तुमने देखा मैं अभी तो आया हूं, और अब तीनों एक साथ मिल जाए तो आपका माथा शर्म से झुक जाएगा कि वो पूछ ले कि आप ये तो 8 दिन से आए हुए हैं। वो कहेगा नहीं, 2 दिन तो वही, अभी तीसरा कहेगा कि अब भी तो कह रहा था मेरे से कि अब भी अभी आए हैं। अब आप मुश्किल में पड़ गए कि नहीं, ऐसी मुश्किल हम झूठ के द्वारा खड़ी कर लेते हैं, और एक बार अगर हम सच बोल दें तो इस सारी मुश्किल से बच सकते हैं, ये हम जानते हुए भी हम अनुभव नहीं करना चाहते। जो हमारे पास विचार हैं उनको अनुभव बनाइएगा, और जो आपका अनुभव है उससे अपने विचार डेवलप करिए, उधार विचार और उधार अनुभव से कितने दिन काम चलाइएगा। एक बार आप पूरे मन से कहते दीजिएगा कि महाराज अब बहुत हो गया, अब हम शुरू कर रहे हैं, अब आप 2-4 दिन स्टॉप करिएगा, हमें कुछ नहीं सुनना आपसे। कोई नहीं कहता आज तक का करके, वो कहता रोज सुनाते जाइए, आपका काम सुनाने का, हमारा सुनने का, कितना अच्छा रिश्ता हमारे बीच, अगर हम आपसे नहीं सुने तो आप क्या करेंगे। और हमने एक रूटीन, ये भी एक रूटीन बना लिया, जबकि लिखा हुआ है कि एक बार सुना, और अगर सुनने के बाद जीवन रूपांतरित नहीं हुआ, बदला नहीं, तो वो सुनना सुनना नहीं कहलाए। वास्तव में तो वही सुनना है जो तुरंत के तुरंत हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। हालांकि हमारी ऐसी क्षमता नहीं हम लोगों की कि सुनते ही साथ, हमें उसको विचार करना पड़ता है, बार बार उपदेश सुनने के बाद, इसको बोलते हैं ना अभिगमन सम्यक दर्शन, हमको बार बार सुनने के बाद फिर कहीं कोई चीज स्ट्राइक करती है, कोई बात नहीं, पर बार बार सुनने के बाद भी स्ट्राइक ना करे तो कभी अपने आप भी विचार करके देखिएगा, और अपने विचार को अनुभव का रूप देने की कोशिश करिए, तो अपने आप ये व्यक्त प्रकट हो जाएंगे। इन व्रतों को ग्रहण करने का मतलब ये है कि ये भीतर से प्रकट हो रहे हैं, ग्रहण करके प्रकट किए जाते हैं, या प्रकट होते ही साथ अपने आप हम ग्रहण कर लेते हैं। 5 अनुव्रत को ग्रहण करने की बात आती है, और अकेले ग्रहण करने से काम नहीं चलेगा, इनको अपने भीतर प्रकट करना पड़ेगा। बात मुझे सिर्फ आपसे इतनी कहनी है, वरना व्रती व्यक्ति का जैसा नेचर होना चाहिए वैसा मुझे बहुत कम देखने में आता है। मैं व्रती व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूं, न करनी चाहिए, व्रती व्यक्ति के प्रति तो वात्सल्य होना चाहिए, है वात्सल्य, पर वो वात्सल्य ही तो है जो कि ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि व्रती व्यक्ति को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। जितना प्रेम उसके भीतर झलकना चाहिए था उतना प्रेम नहीं झलकता, जितना उसके विचारों की पवित्रता होनी चाहिए उतनी विचारों की पवित्रता नहीं झलकती। बाकी खाने पीने की पवित्रता तो हो सकती है कि 3 दिन का आटा खाया होगा या कि 48 मिनट का अचार खाया होगा, लेकिन अपने क्रोध का कितने दिन तक अचार डाल के रखते हैं दूसरे के प्रति कि वो डर बन जाता है, और फिर स्वाद ले लेके खाते हैं तब से लगने लगता है कि 48 मिनट का आचार से तो ये वाला ज्यादा खतरनाक है। क्रोध का आचार डालना ही तो, क्रोध का आचार का मतलब क्या है कि सुबह की बात शाम तक याद रखें, दूसरे दिन तक याद रखें, 6-6 महीने तक याद रखें, ये क्या चीज है? ये अनंतानुबंधी कषाय है, सीधी सीधी 6 महीने के बाद तक जो टिकी रहे, जिसका वासना काल 6 महीने के बाद तक चले, समझना अनंतानुबंधी कषाय है, और उस कषाय के सद्भाव में कोई व्रत नियम संयम नहीं हो सकते। चारित्र तब घटित होता है जब कषाय नष्ट हो जाती है, अनंतानुबंधी जाने पर सम्यक प्रचरण चारित्र आ जाता है, अप्रत्यक्षण कषाय जाने पर देश व्रत इत्यादि जो अनुव्रत हैं वो आते हैं, और प्रत्यक्षण कषाय जाने के बाद महाव्रत आते हैं, संग्रहण कषाय भी चली जाती तब यथाख्या चारित्र आता है जो साक्षात मोक्ष का कारण है। हम अकेले थोड़े से बाह्य आचरण को अंगीकार करके अगर सेटिस्फाई हैं, मान बैठे हैं कि बस यही ठीक है, तो अभी अभी बहुत सारी यात्रा करनी है। जब तक कषायण की मंदता नहीं होगी तब तक चारित्र प्रकट नहीं होगा। चारित्र की कसौटी है कषायण की मंदता। जितनी जितनी कषायण मंद होती जाती उतना उतना चारित्र अपने आप प्रकट होता चला जाता। लेकिन वाह्य में हम चारित्र का पालन कर लेते, इसी को बोलते हैं वाह्य या कि व्यवहार चारित्र। और निश्चय चारित्र का नाम है कषायों की मंदता, जो हमारे भीतर होनी चाहिए। कल आलू छोड़े थे और आलू छोड़ने के बाद चार लोगों से उस आलू को लेकर के झगड़ा किया था, तो फिर आलू छोड़ने पर प्रश्न चिन्ह तो लग ही गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाइएगा, मैं ये कह रहा हूं कि छोड़ दिया है तो थोड़ा आगे बढ़िए ना। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अगर हमने अपना मन में रंगाया है और बाहर से सिर्फ अपना वेश हमने बना लिया है, तो उस वेश को देख करके दूसरा भी भ्रमित हो जाएगा। हमें तो उस वेश के अनुरूप अपना मन भी बनाना चाहिए था, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन ऐसा सुनकर के कोई ये ना सोचे कि अच्छा हमने तो रंगाई नहीं कपड़े, तो ध्यान रखना मन तो रंगेगा ही नहीं। जिसने भी कपड़े नहीं रंगाए, जिसने भी कपड़े ही सफेद होना नहीं शुरू किया है, उसके मन के सफेद होने में बहुत देर लगेगी। अगर हम इसको ऐसा लें तो कबीरदास ये नहीं कह रहे हैं कि आप कपड़े मत रंगाइए, कपड़े रंगा लेने वालों से कह रहे हैं कि आपने कपड़े रंगा के अगर योगी बन गए हैं तो फिर जो है आपके भीतर भी वो योग घटित होना चाहिए। ऐसा ही इन व्रतों के साथ है कि हमारे जीवन में अगर व्रत हमने अंगीकार कर लिए हैं, बहुत शांति बहुत पवित्रता झलकनी चाहिए। निराकुलता के लिए व्रत है जो खैर, वो बेटा मां को बहुत प्यार करता था। उसे अगर कोई था भगवान के बाद तो उसकी मां थी। कुल थे कुछ भी कह लीजिए, वो सिर्फ मां थी या भगवान था। भगवान को तो 24 घंटे अपने साथ रखा नहीं जा सकता, मां उसके साथ 24 घंटे रहती थी। एक बार मां बीमार हुई,
आकुलता आई और कितनी आकुलता हमारी कम हुई है। संकल्प विकल्प का जाल कितना कम हुआ है। ऐसा तो नहीं कि दिन भर संकल्प विकल्प में बीत गया। शुरू की अवस्था में हो सकता है कि संकल्प विकल्प हो, बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि अभ्यास नहीं है। पर धीरे धीरे हमें अभ्यास इस बात का नहीं करना है कि हम बिना आहार के रह सकते हैं, हमें अभ्यास इस बात का करना है कि बिना कषाय किए रह सकते हैं। आज मैंने दिन भर गुस्सा ही नहीं किया, बड़ा मजा आया। बहुत सारे मौके थे, बहुत कोशिश करी लोगों ने, लेकिन आज तो बहुत मजा रहा, आई नहीं गुस्सा। देखें आप गाली देके देखें, आप दे सकते हैं गाली, आप गाली दे सकते हैं लेकिन हम गुस्सा नहीं होंगे। आप हमें नाराज कर सकते हैं, हम नाराज नहीं होंगे। हमारी मौज हम कहते हैं उससे जाकर कि देखिएगा गाली दीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मैं गुस्सा नहीं हो पाऊंगा, क्षमा करना। आप ये सोच रहे हो कि मैं गाली देकर आपको नाराज करूंगा तो ये मेरे से हो नहीं पाएगा। आज तो मेरा यही व्रत है। ऐसा अगर हम अहिंसा और सत्य इत्यादि को अचौरी को अपने जीवन में करेंगे बहुत आनंद आएगा, बाहर देखने वाले को भी आनंद आएगा और अपना जीवन तो आनंदित होगा ही होगा। अहिंसा के बारे में हम समझ चुके हैं, सत्य के बारे में भी थोड़ी सी बातें और हमें जाननी चाहिए। सत्य के लिए बहुत अच्छा श्लोक आचार्य सनमपद्र स्वामी ने लिखा हुआ है, स्थूल मलिकम न वदति न पराण वारयति सत्यमपि विपदे यत्तद् वदन्ति संतः स्थूल वदात् विरमणं निपुणाः। बहुत सीधी सी परिभाषा, स्थूल रूप से झूठ तो बोलना ही नहीं पर ऐसा सच मत बोलना जिससे कि दूसरे के प्राणों का घात होता, जिससे दूसरे के प्राणों को पीड़ा पहुंचती हो ऐसा सच भी मत बोलना, वरना वो भी झूठ के कैडर में जाएगा। हमारा सच अहिंसा से समन्वित है, बिना अहिंसा के सच की कोई कीमत नहीं है। अगर उसके पीछे अहिंसा छुपी है, दूसरे का हित छुपा है, कहते हैं हित मित और प्रिय बोलना। कुरल काव्य में कल अचानक ही मैं खोल बैठा और उसमें वही पंक्ति मुझे देखने में आ गई कि हृदय से निकली हुई मधुर वाणी और ममतामयी स्निग्ध दृष्टि जिसके पास है वो अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करे तो कर सकता है। ये दो चीजें जिसके पास नहीं है उसके जीवन में धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। कई बार तो हम अपनी दृष्टि से हिंसा कर देते हैं, ऐसे देखते हैं कि शायद खा जाएंगे व्यक्ति को, बोलते नहीं है, बोलते बड़े प्यार से, लेकिन दृष्टि हमारी कई बार जो है दूसरे को तकलीफ देने वाली होती, इसलिए शायद लिखना पड़ा कि दृष्टि की स्निग्धता और वाणी की हृदय से निकली हुई अकेली जिह्वा पर मधुरता नहीं है, हृदय में मधुरता घुल गई है, मीठापन घुल गया है, इसलिए वाणी मधुर हो गई है। जिसके हृदय में मीठापन नहीं है उसकी वाणी अगर मधुर है तो वो जीवन को कोई लाभ नहीं देने वाली है। हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, जहां मित और हित और प्रिय लिखा है वहां प्रिय से मतलब नहीं है कि सिर्फ वचनों में प्रिय है, नहीं, जहां की भीतर ही मधुरता छाई हुई है, जहां हित छाया हुआ है, वो जो प्रिय वाणी है। अकेली अहितकारी प्रिय वाणी भी ठीक नहीं है और हितकारी अप्रिय वाणी भी ठीक है। हित करने वाली वाणी हो भले ही थोड़ी सी अप्रिय मालूम पड़े, क्योंकि अप्रिय इसलिए लग सकती है कि एटीट्यूड ठीक नहीं होता सामने वाले का, इसलिए किसी के हित के लिए भैया अच्छी बातें करो, मां अपने बेटे के हित के लिए कितनी बातें करती है लेकिन एक नहीं रुचती उसको। क्यों नहीं रुचती? क्योंकि उसको तो कोई दूसरी चीज प्रिय लग रही ना, उसको तो इमली प्रिय लग रही है और मां कहती कि तू इमली छोड़ दे, मैं लड्डू देती तेरे को मुक्तिकारी बनाएगा, नहीं छोड़ता वो खाएगा, इमली खट्टी मीठी वो अच्छी लगती है उसको, उसको अहित करेगी पर इसके बाद भी प्रिय लग रही है। ये बहुत मुश्किल है कि कोई चीज जो हितकारी है वो ही प्रिय लगे और जो अहितकारी है वो अप्रिय लगे। हम नहीं कह सकते कि दूसरे को क्या प्रिय लगता है क्या अप्रिय लगता है, इसलिए शायद विनय वाले एक जगह लिखा कि अगर साधना हो तो दूसरे का सुख मत साधना, दूसरे का हित साधना। दूसरे का सुख आप नहीं साध सकते, उसको पता नहीं किस चीज में सुख लगता है, इसलिए दूसरे को सुख देने की कोशिश मत करना, दूसरा अपने आप सुखी होएगा, आप सुख नहीं दे सकते, आप तो इतना ही कर लेना कि उसका अहित मत करना, इतना ही पर्याप्त है। दूसरे के हित के लिए जो कुछ भी करना, वाणी बोलना तो दूसरे के हित के लिए और हित से भर करके बोलना वाणी, बस इतना ही सत्य के बारे में पर्याप्त है। बहुत प्रकार के सत्य हैं जो कि बोले जा सकते हैं पर लगते वो झूठ जैसे हैं। 10 प्रकार के सत्य बोलने की सम्मति है, मैं दिक्कत के लिए आया था, याद तो रहता नहीं, इतना शौक सब नहीं कि एकदम कंठस्थ दसों के नाम याद हो, पर ये जरूर है कि हाँ जब जब भी अपन बोलते हैं तो पता ही नहीं लगता है कि कब बोल गए हैं, पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ऐसे सच हम बोलते हैं और कई बार ऐसे झूठ बोल जाते हैं जो कि हमारे लिए नहीं बोलने की, नहीं भी बोले तो भी काम चल सकता। कई बार अलग अलग देशों में जाते हैं तो अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, चोरू कूल ऐसा भी उपयोग होता है। अगर आप दक्षिण तरफ चले जाए, महाराष्ट्र में चले जाए, अब हम महाराष्ट्र में जब थे तो वो बोलते थे वरुण टाका, हमारे कई दिन तक समझ में नहीं आया कि वरुण टाका के मतलब क्या है, फिर गौर से देखते थे कि क्या करते हैं, वरुण टाका बोलते मतलब दाल दे, तो समझ में आने लगा कुछ दिन कि वरुण मतलब दाल और टाका मतलब दे, वरुण टाका। अब वो थाली दिखाए वो कहें ये मीट, मीट बोलते हैं, नमक को बोलते हैं मीट, तो वो सुनने में आता था कि मीट क्या बोल रहे हैं, तो है वो नमक। और जब वो बोलते थे सीरा तो दिखता था हम लोग, अपन तो चाशनी को बोलते हैं सीरा, भाषा में कितना फर्क, लेकिन सच है वो, इसको बोलते हैं देश सत्य। जो अपनी अपनी भाषा में एक ही चीज को अलग अलग ढंग से कहते हैं तो दूसरे को झूठ नहीं कह सकते हैं, सच है वो अपनी भाषा में बोल रहा है, चीज की तरफ इशारा उसका वही है जो हम अपनी भाषा में उस चीज का नाम लेते हैं, तभी इसको देश सत्य बोलते हैं। सम्मत सत्य, राजा है तो उसकी जीवन साथी को क्या बोलेंगे, रानी बोलेंगे। डॉक्टर है तो भले ही उसकी जीवन साथी ने डॉक्टरी ना करी हो पर उसको डॉक्टर नहीं बोलेंगे, ये तो बहुत आसान सी चीज है। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि वह तब झूठ बोल रहे हैं, नहीं, ये सच है, ये सम्मत सच है, सब लोग इसको मानते हैं। और तीसरा सच जो अपने उपयोग में आता है, स्थापना सत्य है, पत्थर की मूर्ति धरी है लेकिन कहते हैं भगवान, बोलते हैं घेवर चढ़ा रहे चढ़ा रहे चिटके, वो बोल रहे हैं क्या, नहीं है, हमने स्थापना करी है, हमने उस चिटक को रंग करके उसको दीप की स्थापना कर दी उसमें, इसलिए हम ठाक से अब कौन कौन देखता है उस तरह में, उस समय ये थोड़ी भाव आता है कि चिटके हैं रंग ही रही चिटके हैं, नहीं मेरा दीप है आरती उतार रहा हूं, मैं ये भी चढ़ा रहा हूं जबकि चिटक चढ़ा रहा हूं। अगर दूसरा समय हो और आपके सामने कोई गरीब खाने के लिए दे तो आप बिल्कुल नहीं ध्यान करेंगे कि ये नैवेद्य है, आप तो गरी की तरह खाएंगे, लेकिन चढ़ाते समय ये नैवेद्य है, मेरे घेवर फैनी गुजर ये ही मेरे सब बोल रहे हैं उसमें। कई लोग कहने लगे हैं आजकल की बोलते ये हैं और चढ़ाते कुछ और हैं, सारा फ्रॉड है। ये फ्रॉड नहीं है, इसका नाम स्थापना सत्य है, वरना वहां कहां आए हैं भगवान मूर्ति में सिद्ध शिलाएं बैठे हुए हैं, पर हमने अपने लिए बुलाए हैं। मेरी श्रद्धा उन्हें जहां बुलाना चाहेगी वहां बुला लेगी, वे आते जाते नहीं है, मेरी श्रद्धा के वशीभूत हैं, इसलिए मैं उनको जहां चाहूं वहां अपनी श्रद्धा की वजह से बुला लेता हूं। बाकी तो वे अपने आत्म कल्याण सकल गे ज्ञायक तदपि निजा आनंद रसलीन, सबको जानते देखते हैं, व्यवहार है कि भगवान सब जानते देखते हैं, लेकिन निश्चय से देखो तो वे अपने आत्मा को जानते देखते हैं। वो हमारे बुलाने से आ सकते हैं, पर हम स्थापना करते हैं, और ये भी सच है, स्थापना सच है, नाम सच। नाम रख दिया अशोक, को भैया जी दिन भर रोते रहते हो, ना शोक यस्य विद्यन्ते इति अशोक, जिनके शोक विद्यमान नहीं है वो कहलाते अशोक। अशोक वृक्ष है जिसके नीचे जाकर के भगवान का शोक समाप्त हो गया था, कैवल्य की प्राप्ति हुई, वो अशोक वृक्ष है। अब किसी का नाम अशोक रख दिया तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि वो रोएगा नहीं, रो सकते हैं। हमारा सच है, हमने नॉमिनेशन किया है, सिर्फ नाम सत्य है, उसके पीछे गुणों की अपेक्षा नहीं है। फिर हम रूप सत्य, बगला है सफेद कह देते हैं, भीतर उसके लाल रंग भी है, हड्डियां सफेद रंग की है, या कि आंख उसकी काले रंग की भी है, पैर का रंग दूसरा है, रक्त का रंग लाल है, पर हम जनरली क्या कहते हैं, बाहर से जो रूप दिखाई पड़ता है हम उसको सफेद कह देते हैं, ये भी सच्चाई है। प्रतीत सत्य, ये बड़े हैं भैया तो बड़े कब से हो गए, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, कोई छोटा था इसलिए कंपेरिजन में हो गए बड़े, ये प्रतीत सत्य है, इसकी अपेक्षा ये प्रतीत होता है बड़ा इसलिए बड़ा है, वैसे कोई यहां पर बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए ये भी सच है। एक व्यवहार सत्य है, कोई से पूछो कि क्या कर रहे, कह रहे भात पका रहे, तो भात थोड़ी पका गया, चावल पकाए जा तब तो पकने की बात भात बनते हैं, पर पूछो तो सामान्य रूप से कह देता कि भात पका रहे, करवाने जा रहे लोहा, और पूछो कि क्या कर रहे, कहले बंबई जा रहे, लोहा करवाए जा रहे कि बंबई, तैयारी उसी की है, इसलिए व्यवहार सत्य है ये। और फिर कहते हैं संभावना सत्य, इंद्र की शक्ति है कि वो जम्बू द्वीप को पूरा पलट सकता है, पलटता नहीं है, संभावना सत्य। ये कहना गलत नहीं है कि इंद्र पलट सकता है पूरे जम्बू द्वीप को, सच्चाई है इसमें, क्योंकि संभावना, संभावना भी सच है। और भाव सत्य, सबसे बड़ा तो भाव सत्य है, भाव सत्य के मायने है कि जो जैसा है उसे वैसा कहने से पहले देख लेना कि हितकर है या नहीं है, इसका नाम है भाव सत्य। चोर देखा क्या, नहीं देखा, कह दिया, जैसे कि साधु जी ने कहा था, बैठे थे और कसाई आकर के उनसे पूछता है कि अभी आपके सामने यहां से कोई गाय निकली है, वे देखते हैं, कह रहे ये तो गड़बड़ है, ये तो कसाई मालूम पड़ रहा है, गाय को ये मारेगा, तो क्या बोलते हैं, वो ऐसा भी बोल सकते थे कि नहीं मैंने कोई गाय नहीं देखी, वो भी सच था, लेकिन एक और घटना आती है कि वे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से कोई गाय नहीं निकली है, मैं बैठा था तब निकली होगी, बात अलग है, मैं खड़ा हुआ हूं तब से कोई गाय नहीं निकली है, एक मिनट पहले बैठे हुए थे, अपने को भी सेफ कर लिया, और गाय को भी, ये कहलाता है भाव सत्य। चोर को भी चोर नहीं कहना, अंधे को अंधा नहीं कहना, काने को काना नहीं कहना, पापी को पापी नहीं कहना, पाप करते सामने देख लेने के बाद भी अपने मुंह से नहीं कहना, जब तक वो स्वीकार ना करे, स्वीकार कर लेने के बाद भी अपना मन खराब मत करना, बल्कि उसने उसके मन को उस पाप से मुक्त करना, अपने को पाप से संलग्न मत करना, ये भाव सत्य कहलाता है। कभी छोटी चीजें जानिएगा, फिर देखिएगा कि अपन कहीं भी 1% भी, मुझे तो कई बार जब लगता है तो एक ऐसा लगता है कि 1% भी धर्म वर्म नहीं करते हैं, सब फोकट मामला है, लगता जरूर है कि हम धार्मिक कार्मिक है, लेकिन इस दृष्टि से देखें तो 1% भी कहीं से कहीं तक धार्मिक कार्मिक नहीं मालूम पड़ते हैं अपन। अब भाव सत्य बताइएगा कि कभी अपन भाव सत्य बोल पाते हैं, कितनी जल्दी मन तो बोल ही जाता है कि कितना चोर आदमी है, भले नहीं कहें पर मन में तो बोल गया कि नहीं कितना बेईमान आदमी है, ऐसा ऐसा क्यों, क्यों आप अपने मन में दूसरे को बेईमान सोच रहे हैं, आप जिस क्षण दूसरे को बेईमान सोचते हैं आप क्या उन क्षणों में बेईमान नहीं हो जाते हैं। इसलिए भाव सत्य सबसे 10 सत्य सत्यों में से एक सत्य और उपमा सत्य, वो तो अपन उपमा दे ही देते हैं, किसी को बहुत तेज हो तो सिंह की उपमा दे देते, भैया सिंह के समान है, मुनि महाराज की जो वृत्ति है वो सिंह के समान है, याचक नहीं है, याचना नहीं करते हैं, जब इधर हाथ रखा तो उसके बाद सिंह के समान, फिर किसी से कोई नाता नहीं, किसी से कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता है अगर तो श्रद्धा का है, जिसकी आज श्रद्धा औरों की अपेक्षा बढ़ जाएगी वहीं जाके चुपचाप खड़े हो जाएंगे, वरना लाखों रुपये भी दे दीजिएगा खड़े होने रुकने वाले नहीं है वो। ये सिंह वृत्ति क्यों लिखी सिंह के समान, उतना सत्य कहलाता है, सिंह नहीं हो गए लेकिन उनके समान अयाचक वृत्ति है, इसलिए एक बार सिंहावलोकन लिखा है कि एक बार निकल के बाहर सिंहावलोकन करते हैं, एक दृष्टि में पूरा रास्ता देख लेते हैं, फिर सिर नीचा करके चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे ऐसे देखते नहीं जाते हैं कि कोई बदल देता, कि कोई ऐसा कर लेता, हमारे मन की बना लेता, नहीं एक बार देखा और बस खत्म, है तो है नहीं है तो नहीं है, सागर की उपमा दे देते हैं क्योंकि उनके जैसे गुण मिलते हैं, इसलिए ये सब उपमा सत्य कहलाते हैं, इन सबको हम बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी भाषा में बोलना चाहिए हम लोग रोज अपने प्रतिक्रमण में करते हैं, मुनियों के लिए लिखा विशेष रूप से, पर जो जो चीजें मुनियों के लिए लिखी हैं वे शावक को नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, कुछ चीजें जरूर लिखी हैं कि मुनियों के समान कभी भी केस लॉन्च करने की कोशिश नहीं करना, मुनियों के समान खेल खेल में भी हाथ में भोजन करने की कोशिश नहीं करना, मुनियों के समान कभी कौतूहल बस भी खड़े खड़े होकर हाथ में भोजन नहीं करना, अन्यथा अंतराय कर्म का बंद होगा। जो महापुरुषों की प्रवृत्ति है उसको अपने जीवन में वैसे बने बिना दोहराने की चेष्टा मत करना, क्योंकि उससे उन महाभूतों की हंसी होती है, ये बात जुड़ी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कि हमें भी जो श्रावक है उसको भी उससे आंशिक रूप से तो बच ही सकता है, जैसे कर्कश वाणी नहीं बोलना, परुष वाणी नहीं बोलना, कटु वाणी नहीं बोलना, निष्ठुर नहीं बोलना, दया से रहित होकर के कई बार अपन बोल देते हैं वो निष्ठुर कहलाती, निष्ठुर और परुष में बहुत फर्क है, एक तो मन की कठोरता और एक वचनों की कठोरता, निष्ठुरता में मन भी कठोर हो गया है और वचन अकेले कठोर नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग लिखे। दूसरे को क्रोध उत्पन्न करने वाली वाणी, गुस्से में अपन लोग दूसरे की ईंधन डालते हैं, अगर देखा जाए तो दूसरा तो अपनी वजह से परेशान है कि गुस्सा हो रहा है और हम और उसमें ईंधन डालते कि और हो, ऐसा उपाय करेंगे कि और गुस्सा आए उसको, गुस्सा आने पर तो पानी डाल सको तो डालो, नहीं तो हट जाओ वहां से, थोड़ी देर में वो ईंधन जल जाएगा तो अपने आप आग बुझ जाएगी। पर कोपा, दूसरे को कोप उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलना, छेन करा, दूसरे के मर्म को भेद देने वाली भाषा नहीं बोलना, दूसरे के मर्म पर चोट नहीं पहुंचाना, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं, अगर बोल जाते हो तो कन्फेस कर लेना कि क्षमा करें आपको कष्ट पहुंचा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कष्ट पहुंचाने का, ऐसा भीतर से अपने आप भाव आ जाना चाहिए। मध्यम करा, आई माननी, बहुत मान पूर्वक नहीं बोलना, भयंकरी, दूसरे को भय उत्पन्न करने वाली भाषा नहीं बोलना, और जीवों की हिंसा जिसते हो ऐसी भाषा नहीं बोलना जो इस प्रकार ककसा, करुआ, परुसा, निथुरा, परकोहनी, मध्यम किसा, अयमायनी, अलंकरा, छियंकरा, भूयान, भयंकरा, दस बिया, भाषा, भाषिया, भाषा बिया, भाषिक जंतु विवा, समन मंदो तस्मिच्छा में दुक्कणम, रोज प्रतिक्रमण करते समय अगर मैंने इस दस प्रकार की भाषा बोली हो, बुलवाई हो, बोलने वाले का समर्थन किया हो तो मेरा पाप मिथ्या। साधु का जीवन जितना आसान बाहर से दिखाई पड़ता है भावनात्मक रूप से उतना ही अधिक सजग और सावधान रहने का होता है, ऐसा ही उपदेश आचार्यों ने श्रावक को भी दिया कि जितनी सजगता आएगी उतना हम पाप से मुक्त होंगे। आज अपने को अचौर्य अनुव्रत के बारे में थोड़ी सी बातें समझनी है। बड़ी से बड़ी चोरी है कि पर पदार्थ को अपना मानने की इच्छा, आध्यात्मिक चोरी यहां से शुरू होती है। पर को पर मानना बिल्कुल अलग चीज है और पर को स्व मान लेना, यहां से हम चोर होना शुरू होते हैं। अपने से पर, अपने आत्मा से जो जो पर पदार्थ हैं उनको हम अपना मान लेते हैं। अहमेदम एदमहम अहमेदस्सो विमम एदम अन्नम जंतर दब्वम सच्चित्ता चित्त निस्संगा
आसिनो पग्वमेदम अहमेदम चावि तुब्बकालम्नि होहिति पुनोभिमज्जम अहमेदम चावि होस्सामि एदम तु असद्भूतम आदि वियक्तम करेदि सम्मूढो भूदत्थम जानन्तो न करेदि दुतम असम्मूढो।
जो प्रबुद्ध है वो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं करता, और जो अप्रबुद्ध है, जो अज्ञानी है, वो कैसी प्रवृत्ति करता है? ये मेरा है, ये मेरा था, ये मेरा आगे भी होगा, ऐसा विचार करता है सब चीजों के बारे में, सचित्त चीजों के बारे में, अचित्त चीजों के, और सचित्ता चित्त दोनों प्रकार की चीजों के बारे में अगर ऐसा विचार करता है तो वो अज्ञानी कहा गया है, वो अचौरी महाव्रत के पालन करने वाला नहीं। क्योंकि अपन अचौरी अनुव्रत समझ रहे हैं, इसलिए अचौरी अनुव्रत में देखते ही है कि दूसरे के दरवाजे पर जाकर के बंदूक तान करके और हम उससे पैसा हड़प के नहीं लाएंगे। अगर मोटी परिभाषा देखें तो इतनी परिभाषा है, पर अब बंदूक का भी ढंग अलग अलग हो सकता है। बंदूक अब वो वाली बंदूक तो बहुत बहुत बड़े लोग माने बहुत साहसी व्यक्ति बंदूक तान सकता दूसरे के सामने, पर हमारी बंदूकें बदल गई। हम ये बात हमेशा कहा करते हैं, अचौरी जो व्रत की बात करते हैं कि हमारी बंदूक मालूम कौन सी है? मेरा बेटा इंजीनियर है, तान दी बंदूक, रखो 5 लाख। मेरा बेटा डॉक्टर है, बंदूक है, रखना पड़ेगा 10 लाख। मेरा स्टेटस, मैं इतना बड़ा आदमी, इतने कम में शादी तो हो नहीं सकती, इतने की शादी होगी। ये क्या है? ये हड़पना नहीं है क्या दूसरे की संपत्ति को? वो उसके देने की इच्छा नहीं थी, पर आपने उसको मजबूर कर दिया है कि वो दे, नहीं तो फिर भुगते हो पूरे जीवन भर। इस तरह की चोरी से भी बचना चाहिए। अभी और चोरी की बात तो नहीं कर रहा हूं, और तो और चोरियां तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये वाली चोरी नहीं छोड़िएगा तो आपका सोच तो वही है, आपका ढंग बदल गया है। अकेले ढंग बदलने से, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि अकेले ढंग बदलने से कोई नहीं बदलता भैया, मन बदलने से तो ढंग भी बदल जाता है, और मन ही नहीं बदला तो ढंग चाहे जितना बदल जावे कुछ होने वाला नहीं जाता। हम मन को बदलने के लिए कोई उपाय ही नहीं कर पा रहे हैं। बदलिएगा, कह रहे हैं आचार्य महाराज कि कैसा मन हो, कैसा मन हो इन चीजों के बारे में जो दूसरे के द्वारा नहीं दी गई हैं, उन चीजों के बारे में जो मेरी नहीं है, उनको अपने बनाने का भाव भी मत लाना। पढ़े अपन 11वें नंबर का है, मुहतंवा पतितंवा सुविस्मृतंवा परस्वम विश्वस्तम नहीं निकाली या कि ठीक से देखा नहीं। मुहतं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वम विश्वस्तम् परस्वम विश्वस्तम् महरति अन्न च दत्ते तद् कृशचौर्यादुपारमनम् उपारमनम। अर्थात अचौर्यानुव्रत, स्थूल अचौर्यानुव्रत किसे कहते हैं? नीतम वा, किसी का रखा हुआ है, उसने अपने मकान में गार्ड करके रखा था और वो भूल गया, उसने अपना मकान बेच दिया, आपके जिम्मे आया, आपने उसकी नींव खुदवाई तो उसमें निकला, तो आपका फर्ज बनता है कि उसको जाकर के वापस दे दें कि आपका रखा है, आपके मकान में मिला था, उसको खा मत जाना। नीतम वा, ये रखा हुआ है। पतितं वा, अगर रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाए तो आप ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करना कि पता नहीं कौन बेईमान उठा लेगा। पहले नंबर तो आप ही बेईमान बन गए उठा करके, दूसरे की बेईमानी देख रहे हैं कि पता नहीं कौन बेईमान उठा लेगा, इसलिए हमने सोचा कि हम उठा करके और गुल्लक में डाल देते मंदिर की, तो ये दानवान भी नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर आप उठा करके उसके मालिक तक भेजने का जिम्मा लेते हैं तब ठीक है, वरना मत उठाइए। अगर आप उसके मालिक तक नहीं भेज पाते हैं, पतितं वा, गिरी हुई चीज को 5 पैसे का सिक्का ही पड़ा हुआ है तब भी टच नहीं करना, देख लिया है, अगर आपकी इच्छा हो रही है कि आज तो अपना पूरा दिन भी निकल जाए लेकिन ये संपत्ति उस व्यक्ति तक जिस दिन उसका मालिक है वहां पहुंचाऊंगा, तो छूइएगा, वरना मत छूइएगा। पतितं वा, गिरी हुई चीज है किसी की, पता नहीं वो भूला भटका खोजने आ जाए और उसे नहीं मिलेगा तो कहां भटकेगा वो। सब ऐसा सोच ले। और एक अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें निकला कि ये प्रैक्टिकल हुआ है कि पूरे विदेश के और इंडिया के लोगों का मिलाकर के 10-10 लोग चुने गए थे, रास्ते मनी बैग डाले गए थे, जिसमें से अधिकांश 2-3 लोग हैं जो विदेशी, जिन्होंने नहीं उठाए, बाकी सब ने उठा लिए, और इंडियंस में 2-3 ने भर उठाए हैं, बाकी किसी ने नहीं उठाए। 7 लोगों ने 10 में से मनी बैग जो का पड़ा रहने दिया, उठाए नहीं, और फॉरेनर्स में से 7 लोगों ने उठा लिया, सिर्फ 3 ने नहीं उठाया। और उन इंडियंस में से अधिकांश लोगों ने, जिनने उठाया था उसमें से भी अधिकांश लोगों ने उस मनी बैग को जो उसका मालिक था उसको खोज कर पहुंचाने की कोशिश की। ये इंडिया की, ये भारत की तासीर में है, ये हमारी अपनी संस्कृति है। और वही चीज यहां लिखी, उसको पढ़ के मुझे बहुत गौरव हुआ कि हमारे आचार्य ने इसलिए लिखा है कि पड़ी हुई चीज उठाना मत, अगर उठाओ तो उसके मालिक तक भेज करके चैन लेना, वरना नहीं उठाना, दोष लगेगा चोरी का। इतना अगर किसी के भीतर ऐसा अच्छा विचार है तो वो अचोर्य अनुव्रत का पालन कर सकता है। सुविस्मतम वा, किसी व्यक्ति ने हमारे पास आकर के और रुपए रख दिए थे और अचानक वो व्यक्ति भूल गया, तो हमारा फर्ज है कि उसे लौटा के आए कि आप तो भूल गए, आपने रख दिए थे हमारे पास। यदि वो व्यक्ति रख करके मर गया तो उसके बेटे को जाके देगा, आपके पिता मेरे पास इतने रुपए रखे गए थे, वो तो समाप्त हो गए, ये आप ले लीजिएगा अपने। ये कहलाता है सुविस्मृतम वा, कोई भूल गया है, किसी ने आपके पास गिरवी रखी थी 5 सोने के सिक्के और भूल से वो कहता है कि जो 4 सिक्के रखे थे वापस लौटा दो और आप भी मजे से कि हाँ 4 ही रखे थे दे जाओ, तो नहीं भूल गया तो अपन भी भूल जाओ। कहते नहीं, मैं नहीं भूलूंगा, आपके 5 थे आप भूल रहे हैं, आप कभी ऐसा करके तो देखिएगा। आप किसी छोटे मोटे दुकानदार से ऐसा करके देखिएगा, अगली बार आप उसकी दुकान पर जाइएगा तो शायद बोर्ड के खड़ा हो जाएगा, आपको पहले नंबर सामान देगा। ऐसा कई बार जीवन में घटित होता है और अपन इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, सब्जी खरीदने गए हैं और सब्जी वाला बहुत तेजी में है और जल्दी जल्दी दे रहा है और सब्जी भी दे दी और 10 रुपए का नोट उसको दिया था और सब्जी ली थी हमने 10 ही रुपए की, थोड़े बहुत पैसे वापस लौटाने थे लेकिन उसने जो है अधिक पैसे लौटा दिए, 5 रुपए अधिक लौटा दिए। अब क्या करेंगे आप? आपका फर्ज है कि या तो तुरंत, अगर आप भी भूल गए हैं, घर जाके याद आए कि ये 5 रुपए की सब्जी खरीद के लाया हूं और 5 रुपए मेरे पास कैसे बच गए, जरूर वो भूल गया, जाकर के आप दे दीजिएगा। आप अगले दिन उसी सब्जी वाले की दुकान पर जाके देखिएगा, वो आपको कितना रिस्पेक्ट देता है आपकी उस एक सच्चाई के लिए। लेकिन ऐसा प्रयोग करते नहीं, हम तो अपना ईमान खो बैठते हैं 5 पैसे के लिए, 5 पैसे के लिए अपना ईमान तुरंत दांव पे लगा देते हैं। 1 रुपये किसी ने ज्यादा दे दिया, अच्छा बुद्धू बनाया है, बढ़िया, अब वो 1 रुपये कितने दिन खा लोगे भैया, पूरी जिंदगी तो बचा लो, कोई बात नहीं, और नहीं तो दिया उसका कि भैया तुम्हारा ज्यादा आ गया मेरे पास। ऐसी मानसिकता हो तो व्रतों का पालन होता है, और ऐसी मानसिकता न हो तो फिर तो बाहर से तो कोई व्रत पालन करे तो कर सकता। परस्व, दूसरे के धन को न हरति अन्न च दत्ते, न स्वयं ग्रहण करता है न दूसरे को देता है, वो व्यक्ति अहिंसा, वो व्यक्ति अचौर्य अनुव्रत का पालन कर सकता है। अगर अचौर्य का पालन आपने शुरू कर दिया है तो 5 चीजें हो सकती हैं जहां आप चूक सकते हैं। थोड़ी सी चूक का नाम अतिचार है, पूरी तरह से व्रतों का भंग होना अनाचार है, ये अपन जान चुके हैं। अतिचार और इसके पढ़ लेते हैं, चौर प्रयोग चौरा, थादान विलोप सदृश्य सन्मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम पंचास्ते व्यति पापा, चौर प्रयोग। खुद तो जो है चोरी नहीं कर रहे पर चोरी करने की दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, या कि दूसरे को किसी को प्रेरणा दी है तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। किसी ने दूसरे को प्रेरणा दी चोरी करने की तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं, या फिर स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं, खुद तो चोरी नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी चोरी का दोष लग जाएगा। आप करो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, हमने तो छोड़ दिया है, पर आप करो, कर सकते हैं। ये चौर प्रयोग है, चौरार्था दान जान रहे हैं कि चुरा के लाया है और आपने उसको खरीद लिया, तो ये चौरार्था दान है। बहुत सारी चीजें हैं, स्मगल, आज तो स्मगलिंग का बहुत सारा सामान कोई व्यक्ति गौर से देखेगा तो अपने को गौर से देखिएगा। आचार्यों ने तो लिखा हुआ है कि ऐसा संभव है। विलोप, विलोप के मायने हैं विरुद्ध राजातिक्रम, विलोप कर देना, जो चीज जितने भाव की है उतने भाव में ना बेच करके, कहीं खरीदी है और कहीं अधिक भाव में बेच करके आ जाना। इस राज्य में सस्ती मिलती है, यहां से खरीद करके दूसरे राज्य में महंगी मिलती है, वहां का व्यापार कर लिया, ये सब जो है वो चोरी में शामिल है। सदृश सम्मिश्रा, जो चीजें एक समान है उनको मिला दिया, ये तो अपन बहुत जानते हैं, मिलावट करने का धंधा तो बहुत तेजी से चलता है, वो मिलावट कर देते हैं। आजकल तो कोई भी चीज मेरे ख्याल से व्यक्ति भी शुद्ध नहीं मिलेगा, चीजें तो ठीक है, चीजें भी सब मिक्सअप होकर के आ रही, कोई भी चीज नहीं है। खाने पीने की चीजों के साथ तो और मुश्किल है, पहनने ओढ़ने की सब चीजों में कोई ना कोई चीज मिक्स होगी, और ऐसी चीज मिक्स होगी जिसमें कि हिंसा हो रही होगी। सबसे दुखद ये है, जितने भी स्लॉटर हाउस की चीजें हैं, एक पूरी लिस्ट है 15-20 पेज की, मैं तो सब चीजें रखे बैठा हूं। आपका इंटरेस्ट हो तब तो मजा आता है, आप ही का इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या करूं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन चीजों को जानने का और फिर इन चीजों को छोड़ने का। स्लॉटर हाउस में एक एक चीज कहां जाकर के हमारे खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने में आ रही है, काम में, अकेले स्लॉटर हाउस का माउस उपयोग में आ रहा है ऐसा नहीं है। स्लॉटर हाउस की एक एक चीज, वहां नीचे गिरा हुआ जो वेस्ट कचरा है वो भी आपकी प्लाई में आकर के डू बनता है, उसका प्लाई में, जिस प्लाईवुड को आप बहुत ठाठ से लगाते हैं उसमें वो ग्लू की तरह डलता है प्लाईवुड। अब क्या कर सकते हैं अपन, अपने हाथ में ही नहीं, अपन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, शायद बात कर रहे हैं सिर्फ। बात करना तो अपने को आती है, इसलिए अब बात करने का मन भी नहीं होता जब हम अपने जीवन में वो चीजें छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसमें हो सकता है कि इसमें इसको पेस्ट करने के लिए जो लगी हुई हो उसमें ऊंट की हड्डी की जिलेटिन हो, नहीं कह सकते हैं अपन, इसलिए बहुत मुश्किल है। मिलावट से संभलना, अपना लोटा छान सकते हैं अपन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, पूरे कुएं को नहीं छाना जा सकता। अपना लोटा अपने पास आए उतना छान लिया और आगे बढ़ जाइएगा। हीनाधिक विनिमानम, बड़े बांटों से तो चीज ले लेना और छोटे बांटों से दूसरे को दे देना, मोटा मोटा तो ये है। पर और बहुत विशेष रूप से देखेंगे तो जितनी भी टैक्सेशन वगैरह की चोरी है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं नहीं कहता आपका मन खराब होगा, क्योंकि कर तो रहे ही हैं आप, तो बेकार में आप परेशान होंगे, समय भी मेरा हो गया। कभी आपका मन बने अगर चोरियां अनुरत लेने का तो जरूर आइएगा, बैठेंगे अपन कि कौन सा रास्ता निकल सकता है जिससे कि हम अपने जीवन में और इन व्रतों को आसानी से, है बहुत आसान, ज्यादा कठिन नहीं है, पर एक बार मन बनाना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। फिर छोटी मोटी विपत्तियां तो आएंगी, ईमानदार व्यक्ति को विपत्ति तो आएगी, तो थोड़ी सी ईमानदार होकर के 2-4 दिन के लिए देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो फिर कंटिन्यू कर लेंगे उसको, तो ऐसा भी किया जा सकता है। इन व्रतों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2-4 दिन के लिए लिए जाते हैं, जब लिए जाते हैं तो पूरे 5 लिए जाते हैं, जब लिए जाते हैं तो पूरे जीवन भर के लिए लिए जाते हैं, पर थोड़ा थोड़ा करके अपना मन तो बनाना ही पड़ेगा अपने जीवन के स्वयं के कल्याण के लिए। हम इन व्रतों को अंगीकार करें, ऐसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि।
सभी समाचारों को आपको आकर्षण के लिए